सुर्खियों में
नमस्कार श्रोताओं, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुबोध मिश्र और आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा और द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिलने पर। भारत और यूरोप के बीच रणनीतिक, आर्थिक, तकनीकी और सुरक्षा सहयोग लगातार बेहतर हो रहा है और प्रधानमंत्री की यह यात्रा कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व राजदूत अनिल त्रिगुनायत जी। अनिल जी, आपका आकाशवाणी में हार्दिक स्वागत है।
जी नमस्कार।
आज की चर्चा शुरू करने से पहले आइए सुनते हैं कि नीदरलैंड्स में भारत के वर्तमान राजदूत कुमार तुहिन ने क्या कहा है।
तो मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री जी की नीदरलैंड्स की यात्रा बहुत ही सक्सेसफुल रही है। इस यात्रा में जो इसका कंटेंट था और जो इसके जो आउटकम थे, अगर सबको देखें तो इतनी रिच कंटेंट और इतनी बढ़िया बातचीत जो यहाँ के नेताओं से हुई है, इतनी अच्छी बात मुझे लगता है कि बहुत ही समय में ऐसी कभी नहीं हुई होगी। इसको अगर मैं विस्तार से बताना चाहूँ तो सबसे पहले तो जब यहाँ के किंग से और क्वीन से उनकी बात हुई, उनके प्रधानमंत्री जी के आदर में उन्होंने एक लंच भी आयोजित किया वहां पे बहुत ही विस्तार से और कई विषयों को टच करते हुए बात हुई। और यहाँ के जो किंग और क्वीन है उन्होंने लंच में उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को आमंत्रित किया ताकि उनसे विस्तार से हर विषय को, जिसमें कि कला भी है और संस्कृति है, जिसमें ट्रेड और इन्वेस्टमेंट भी है, यहाँ के कुछ कंपनी के काफी बड़े सीईओ को बुलाया गया था और पूरा का माहौल जो था वो बहुत ही बढ़िया और काफी इनफॉर्मल और ऐसा माहौल था जिसमें कि बहुत ही डिटेल में बात हो सकी उसमें। उसके बाद जो उनकी बातचीत यहाँ के प्रधानमंत्री से हुई, उसके पहले दो बड़े महत्वपूर्ण काम हुए यहाँ पे। पहला तो ये हुआ कि जो चोला की जो प्लेट्स हैं उन प्लेट्स का रेस्टिट्यूशन, और इसके बारे में आपने सारी डिटेल देख ली होगी। ये बहुत ही ऐतिहासिक चीज है और सबसे बड़ी चीज है कि ये एक तरह समझिए कि दोनों देशों के बीच में एक तरह से सांस्कृतिक संबंधों को एक और मजबूत तरीके से ले जाने का एक आधार खुल गया है बिना किसी कंडीशन के। और ये भी जानते हुए कि ये जो चोला की प्लेट्स हैं एक प्राइवेट कलेक्शन में यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी लाइडन की है वहां पड़ी हुई थी, उसके बाद भी उन्होंने एक कमीशन को रेफर किया और उसकी प्रोवेनेंस तय करने के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि इसे में हमें भारत को रिस्टिट्यूट करना है। और ये इसके बाद में ASI और लाइब्रेरी उनके बीच में आगे जा करके और रिसर्च करने के लिए और डेटा एक्सचेंज करने के लिए, मेटा डेटा बदलने के लिए, इन सब के ऊपर में काम करने का एक बहुत मजबूत आधार बन गया है। दूसरी चीज हुई कि ASML और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच में उन्होंने एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण शुरुआत है, क्योंकि अगर आप देखें कि ASML अपनी तरह की एक अनूठी कंपनी है और इस कंपनी की जो खासियत यह है कि वो ऐसी मशीनें बनाते हैं जिन मशीनों को बनाने वाली कोई कंपनी दूसरी दुनिया में है ही नहीं, जिनसे कि सेमीकंडक्टर फैब बनती है। और ये हमारे यहाँ जो ढलेरा में प्लांट बन रहा है उसमें हमारी शुरुआत करने के लिए बहुत ही मजबूत आधार देगा। और यही नहीं बल्कि जो सेमीकंडक्टर का जो इकोसिस्टम है उस इकोसिस्टम में एक बड़ी अच्छी शुरुआत हो सकती है हमारे आने की। जो उनकी बातचीत यहाँ के प्रधानमंत्री से हुई उसमें भी कंटेंट बहुत ही रिच था और संबंध के सारे आयामों पे, जिसमें ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, कल्चर है, पॉलिटिकल है, डिफेंस है, मैरिटाइम सिक्योरिटी है, हेल्थ है, हर विषय पर बात हुई और साथ साथ विश्व में जो अभी आज की स्थिति है वहां भी बात हुई। और इसके बाद आपने जो हमारी वेबसाइट पर देखा है कि बहुत ही लंबी लिस्ट निकली है सारे जो अग्रीमेंट्स कंक्लूड हुए हैं, और ये अग्रीमेंट्स आपको इनके जो रेंज है और इनकी जो डेप्थ है ये आपको एक आपको एहसास कराएगी कि जो वार्ता हुई और वार्ता की जो सफलता है वो कितनी गहरी है और कितनी व्यापक है। और अंत में मैं ये कहूंगा कि इसके बाद यहाँ के प्रधानमंत्री जी ने हमारे प्रधानमंत्री जी के आदर में एक रात्रि भोज किया था, उसमें भी बहुत ही सहज माहौल था जिसमें दोनों देश के नेताओं ने आपस में उन्होंने, क्योंकि उनकी पहली मुलाकात थी फॉर्मल तरीके से, काफी बढ़िया और क्लोज बात की, बहुत विषयों बात की। और यही नहीं इसमें दोनों देशों के विदेश मंत्री और बाकी भी उच्च अधिकारी उनको भी मौका मिला अपनी अपनी बात करने का। और मुझको ये लगता है कि इससे हम दोनों देशों का जो सबसे महत्वपूर्ण परिणाम है कि एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एस्टैब्लिश हुई है, उसको आगे ले जाने के लिए, उसको और कंटेंट को डेवलप करने के लिए एक बहुत ही मजबूत हमारा एक आधार बन गया है। और कल एक हमारी प्रोग्राम का एक पार्ट और भी है, वो ये है कि प्रधानमंत्री जी जाने वाले हैं, यहाँ आफ्सलाव डाइक है जो कि वाटर मैनेजमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। और यह प्रोजेक्ट इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इसकी जो सीख है, इसके जो कुछ लेसन्स हैं, उस लेसन्स को हम लोग अपने यहाँ भारत में भी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में हम लोग लगा पाए। और जिसमें से एक है कल्पसार, इस पर भी एक लेटर ऑफ इंटेंट पर इसमें भी एक समझौता हुआ है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में इसको भी हम लोग आगे ले जा पाएंगे। तो ओवरऑल मैं बहुत ही खुश हूँ और मुझे लगता है कि ये एक ट्रूली माइलस्टोन विजिट रही है प्रधानमंत्री जी की, और इससे हमारे दोनों देशों के बीच में हिस्टोरिक टाइज एस्टैब्लिश होने वाले हैं। धन्यवाद
अनिल जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा को भारत यूरोप संबंधों और खासकर स्वीडन जैसे देशों के संदर्भ में आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं?
देखिए, यूरोप हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी पार्टनर रहा है। सब डेमोक्रेसीज हैं, भारत सबसे बड़ी दुनिया की डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है और सबसे बड़ा देश है आज की डेट में, बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो उन लोगों का भी एक इंटरेस्ट है। जहां तक हम लोगों का सवाल है, उसमें दो तीन चीजें बड़ी इम्पोर्टेंट है कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर बहुत उथल पुथल मची हुई है, कई तरह की ब्लैक स्वान इवेंट साइमल्टेनियसली काम कर रही हैं, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर अभी तक खत्म नहीं हुआ है जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट यूरोपियन देशों के ऊपर और दूसरे देशों के ऊपर हो रहा है। अब ये मिडल ईस्ट का जो ईरान यूएस इसराइल का वॉर है, उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, और अभी तक पूरी तरह से पैंडेमिक का जो इम्पैक्ट था वो भी खत्म नहीं हुआ है, नई तरह के वायरस भी आने लगे हैं। तो ग्लोबल चैलेंजेस हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज के हो, टेररिज्म के हो, इनोवेशन के हो, रिसर्च और डेवलपमेंट के हो, उन सब में हमारा यूरोप के साथ में जो कोलैबोरेशन है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। और इस वर्ष जैसा आपको पता है कि भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया है, और इसी तरह से कुछ पांच देशों के साथ में यूरोपियन यूनियन के ही है लेकिन उसमें अलग से भारत ने एक और ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। उन दोनों के अंतर्गत हमारे जो दिशाएं हैं एक दूसरे के साथ काम करने की और भी ज्यादा प्रगतिशील होंगी। तो प्रधानमंत्री मोदी की जो ये विजिट इस वक्त हो रही है वो उन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ रही है। और अभी देखिए, स्वीडन और बल्कि चारों देश जो बाकी हैं, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे और आइसलैंड, ये जो पांच देश हैं, इनको हम नॉर्डिक कंट्रीज के रूप से कहते हैं। तो प्रधानमंत्री इस बार स्वीडन और नॉर्वे की यात्रा कर रहे हैं। आज वो स्वीडन पहुंचे हैं, नीदरलैंड्स में काफी अच्छी यात्रा रही वहां पर, जैसा कि आपने वहां के एम्बेसडर, जो हमारे एम्बेसडर हैं कुमार तुहिन, की बात से बताया और प्रधानमंत्री ने भी कहा है। देखिए, वहां करके एक बात कही कि WAH, जैसे वाटर एग्रीकल्चर एंड हेल्थ और ग्रीन शिपिंग, ग्रीन कॉरिडोर, डिफेंस सिक्योरिटी में माइक्रोचिप्स, कंप्यूटर, सेमीकंडक्टर्स, और हमारे एक और चीज बड़ी इम्पोर्टेंट है, इस बार उन्होंने 11th सेंचुरी की जो चोला डायनेस्टी के टाइम की जो कॉपर प्लेट्स थी, इसमें काफी कुछ लिखा है, उनको उन्होंने वापस किया है, भारत को सौंप दिया, और एक रोडमैप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए तैयार हुआ है जिसके चलते और भी हमारे रिश्ते उनके साथ घनिष्ठ होंगे। अब स्वीडन एक ऐसा देश है जिससे मैं समझता हूँ 100 साल से ज्यादा पुरानी हमारी मित्रता है। 1922-23 में मैं समझता हूं कि वहां की जो बड़ी बड़ी कंपनी स्वीडिश मैच और ये सब भारत में आई थी, खासतौर से पुणे में एक जगह है जहां पर उनका पूरी सारी कंपनीज, चाहे वो अल्फा लवाल हो या स्वीडिश मैच हो, इन सब के ऑफिस और एस्टेब्लिशमेंट थे वहां पर। मुझे याद है जब मैं वहां स्वीडन में था तो एरिक्सन के जो CEO थे और एक वहां के ट्रेड मिनिस्टर थे लेफ पग्रोस्की, उन्होंने मुझसे कहा कि 95% जो इंडिया का टेलीकम्युनिकेशन फ्रेमवर्क है वो एरिक्सन के द्वारा दिया गया। तो बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज हैं वहां पर 50 से ज्यादा मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के हेडक्वार्टर्स हैं। छोटे से देश हैं लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में, R&D के मामले में और क्लाइमेट चेंज के मामले में हो, वाटर मैनेजमेंट के लिए हो, उन सब ने बहुत अग्रिम भूमिका निभाई है दुनिया में। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट वो लोग इस बात पे करते हैं, अपने ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर में सबसे ज्यादा खुश देश माने जाते हैं दुनिया के अंदर, लीस्ट करप्शन माना जाता है वहां पे। तो मैं ये समझता हूं कि एक ये विन विन सिचुएशन होती है दोनों के लिए, इतना बड़ा मार्केट, और वो लोग अब भारत की तरफ पूरी तरह से ध्यान दे रहे हैं। नॉर्वे में इस बार जो है ये इंडो नॉर्डिक जो समिट स्टार्ट हुई थी उसका ये तीसरा एडिशन होगा, पहली बार स्वीडन में हुई, दूसरी बार डेनमार्क में और तीसरी बार जो है यहां हो रही है। लेकिन ये समिट जो है ऐसे वक्त में है जबकि हम देख रहे हैं कि मिडल ईस्ट का वॉर चल रहा है, और रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है जिसका इम्पैक्ट उनके ऊपर भी काफी है, तो इसलिए इन सब बातों के ऊपर बड़ी डिस्कशन होगी और खास तौर से किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे नए आयाम को लेकर के, चाहे वो इनोवेशन है टेक्नोलॉजी के रूप में हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के रूप में हो, एजुकेशन में हो, पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस के बारे में हो, या और कुछ नए दिशाएं अगर दी जाएंगी इसको, तो मैं समझता हूं रोड मैप जो है स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन का उसको और ऊपर ले जाया जाएगा।
जी, आपने लगभग सभी आयामों पर शुरुआती रोशनी तो डाली, अब कुछ क्षेत्रों पर हम बारीकी से बात करें, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं कि भारत में नॉर्वे की राजदूत मे एलन स्टेनर ने प्रधानमंत्री की इस यात्रा के बारे में क्या कहा है।
नॉर्वे और भारत के बीच में संबंध बहुत अच्छे है। हम प्रधानमंत्री मोदी जी नॉर्वे में स्वागत है।
अनिल जी, जैसे आपने पहले उल्लेख किया था व्यापार समझौते की बात है, तो भारत और यूरोपीय संघ के बीच जो एफटीए है, ये दोनों पक्षों के भविष्य के आर्थिक संबंधों को आकार देने में अब आगे और कितना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है?
देखिए, जैसा आपको मालूम है कि लगभग 18 सालों से हमारा इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर में डिस्कशन चल रहा था और मार्केट एक्सेस के कुछ बिंदुओं को लेकर के वो पूरी तरह से नहीं हो पा रहा था, लेकिन चूंकि इस वर्ष में हुआ है तो एक बड़ी अचीवमेंट मैं कहूंगा इस बारे में, क्योंकि यूरोपियन यूनियन एक हमारा, अगर हम सबको एक साथ स्ट्रेट में रखें तो बायलैटरल तो है ही है, वहां पर बड़े इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हमारे, लेकिन अगर कलेक्टिवली देखें तो हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हो जाता है ऑलमोस्ट, और टेक्नोलॉजी के रूप में भी हमारे जो भारतीय वहां पर काम करते हैं इतने सारे, और उनके यहाँ इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनकी कंपनीज हैं यहाँ पर, तो अब यह कि सबको थोड़ा कहीं ना कहीं आजकल मार्केट चाहिए और मार्केट के साथ साथ टेक्नोलॉजी की बड़ी आवश्यकता है। तो भारत ने जो ये उनके साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, और ये एग्रीमेंट में दोनों साइड्स को फायदा होगा, लेकिन भारत की कंपनियों को काफी बड़ा फायदा होगा जैसा पता लग रहा है। दूसरी तरफ से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, फ्री मूवमेंट मोबिलिटी का चांसेस है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रोफेशनल्स हैं, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स हैं भारत से बहुत ज्यादा होते हैं, खाली गुड्स का ही एक्सपोर्ट नहीं होता है, तो उनको हमें एक बड़ा मार्केट जो है जिसको कहते हैं कॉमन मार्केट, उसमें पूरी एक्सेस मिल जाएगी हमारी कंपनीज को। लेकिन ये बात सच है कि यूरोपियन यूनियन का जो ढांचा है और उनकी जो ब्यूरोक्रेसी है वो आसान नहीं है, लेकिन अब चूंकि एक तरह से आपको एक एडवांटेज मिल गया है मार्केट एंट्री के लिए, तो मैं समझता हूं कि ये हमारी भारतीय कंपनियों के लिए काफी अच्छा होगा। देखना पड़ेगा एक दो साल में कितना लाभ इससे होता है और कितनी हमारी मार्केट एक्सेस बढ़ी है, लेकिन जो अभी तक के इंडिकेशंस हैं, ये दुनिया की जो समस्याएं हैं उस सब के बावजूद भी मैं समझता हूं वो काफी आशाजनक है।
जी, और अंत में संक्षेप में जानना चाहेंगे कि रणनीतिक हितों की दृष्टि से क्या इसके दीर्घकालिक परिणाम हो सकते हैं?
देखिए, इसमें काफी सारे जो देश हैं जैसे फ्रांस है, यूके है, इटली है, जर्मनी है, यूरोप के खास देश और नॉर्डिक कंट्रीज जिसके स्वीडन नॉर्वे जहां प्रधानमंत्री जा रहे हैं, वो लोग भी डिफेंस और सिक्योरिटी में, शिपिंग के अंदर, ग्रीन कॉरिडोर्स के अंदर में, ग्रीन शिपिंग के अंदर और ग्रीन टेक्नोलॉजीज में, फाइनेंस में, एनर्जी सिक्योरिटी के मामले में, रिन्यूएबल्स के लिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो उसमें ये सारे आयाम आ जाते हैं, खाली मिलिट्री सिक्योरिटी नहीं आती है, आजकल साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, तो इन सब में ये देश बहुत आगे हैं और इसलिए उनके साथ जो कोलैबोरेशन है वो हमारे लिए एक म्यूचुअली बेनिफिशियल कोऑपरेशन रहेगा जिसमें दोनों साइड्स को बड़ा फायदा हो।
जी, तो श्रोताओं, जैसा कि आपने सुना, आज हमने भारत और यूरोप के बीच बदलते संबंधों तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूरोप यात्रा के विभिन्न आयामों को समझने की कोशिश की। अनिल त्रिगुनायत जी, अत्यंत सार्थक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
सुर्खियों में